20 मार्च रविवार का नमस्कार भारत, फैसल मोहम्मद अली से। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से दी शिकस्त। फ्रांस हमले के संदिग्ध अब्दुल सलाम ने कहा प्लान था कि हमले के बाद वो खुद को बम से उड़ा लेगा, लेकिन बाद में बदल गया इरादा। और झारखंड के आदिवासी और मूलवासी क्यों हैं आंदोलन की राह पर?
असान नीति लागू करो, कल झारखंड बंद रहेगा।
सुनवाएंगे एक रिपोर्ट, एक खास खबर उत्तराखंड से भी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। वर्ल्ड T20 में पाकिस्तान पर भारत की जीत का सिलसिला जारी है। कोलकाता में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। भारत की जीत में विराट कोहली का अहम योगदान रहा, वो 37 गेंदों पर 55 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जीत के लिए 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 15 ओवरों में 4 विकेट पर 119 रन बना लिए। कप्तान MS धोनी ने 9 गेंदों पर 13 रन बनाए और वो भी नॉट आउट रहे। इससे पहले युवराज सिंह ने 23 गेंदों पर 24 रनों की पारी खेली। पेरिस हमलों के प्रमुख संदिग्ध सलाह अब्दे सलाम ने पर आरोप तय कर दिए गए हैं। अब्दे सलाम पर चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने और चरमपंथियों द्वारा हत्या के आरोप लगाए गए हैं। अब्दे सलाम के वकील ने कहा है कि उसके प्रत्यर्पण का वो विरोध करेंगे। फ्रांस के आंतरिक मंत्री बर्नार्ड कज़नोव ने कहा कि इस गिरफ्तारी के बाद भी चरमपंथ के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। ये गिरफ्तारी यूरोप में इस्लामिक स्टेट के लिए एक बड़ा झटका है। अभी भी संगठन के और सदस्यों की तलाशी जारी है। हम बिना थके और बिना रुके चरमपंथ के खिलाफ लड़ते रहेंगे और हम ही जीतेंगे। ये थे बर्नार्ड कज़नोव के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील की राष्ट्रपति डिल्मा रूएफ ने कहा है कि वो उस सेनेटर के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज कराएंगी जिन्होंने दावा किया था कि डिल्मा रूसेफ तेल कंपनी पेट्रोब्रास के घोटाले में शामिल हैं। उनकी वर्कर्स पार्टी के पूर्व सदस्य डेलसिडे अमरोल ने कहा था कि डिल्मा रूसेफ को पता था कि पेट्रोब्रास में वित्तीय गड़बड़ी हो रही है और उन्होंने इस मामले में जांच में बाधा डालने की कोशिश की। डिल्मा रूसेफ ने इन आरोपों से इनकार किया है, लेकिन इससे उन पर महाभियोग चलाने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ट्यूनिशिया में अधिकारियों ने कहा है कि लीबिया की सीमा के पास बेन गुअरदान में हिंसक संघर्ष में 2 चरमपंथियों की मौत हो गई है। इस महीने की शुरुआत में इस्लामिक स्टेट के लड़ाकों के हमलों के जवाब में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में बेन गुअरदान शहर में 50 लोगों की मौत हो गई थी। शनिवार को अल्जीरिया की सीमा के नज़दीक ट्यूनिशिया में लड़ाई की खबरें भी आई थी। प्रवासी संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच हुआ समझौता आज से लागू हो जाएगा। इस समझौते के तहत जिन प्रवासियों की शरण के लिए दी गई अर्जी खारिज होगी उन्हें ग्रीस से वापस तुर्की भेज दिया जाएगा। हर सीरियाई प्रवासी को तुर्की वापस भेजने पर तुर्की स्थित कैंपों में एक प्रवासी के पुनर्स्थापना की जिम्मेदारी यूरोपीय संघ उठाएगा। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी रेडियो की पहली सभा फैसल मोहम्मद अली से नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कल शाम कोलकाता में हुए भारत पाकिस्तान T20 मैच से, जिसमें भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से मात दे दी। जीत का सेहरा बंध रहा है विराट कोहली के साथ, जिन्होंने 37 गेंदों पर 55 रन बनाए और नॉट आउट रहे। जीत के लिए 119 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे भारत ने 15.5 ओवरों में 4 विकेट पर 119 रन बना लिए। एक रिपोर्ट के साथ आदेश कुमार गुप्ता।
कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स मैदान में कल विश्व कप 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट में पहले तो बारिश की बौछार हुई, उसके बाद 18-18 ओवर के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 13 गेंद शेष रहते आसानी से मात दी।
As far as India-Pakistan is concerned, in World T20 matches, एंड वर्ल्ड कप्स।
भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपने ही अंदाज में मोहम्मद इरफान की गेंद पर पहले तो छक्का और उसके बाद एक रन लेते हुए भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 6 विकेट से जीत दिला दी। भारत के सामने 119 रनों का लक्ष्य था जो उसने विराट कोहली के शानदार और नाबाद 55, कप्तान धोनी के नाबाद 13 और युवराज सिंह के 24 रनों की मदद से 15.5 ओवर में ही केवल 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। विराट कोहली ने केवल 37 गेंदों पर 7 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन बनाए। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 18 ओवर में 5 विकेट खोकर 118 रन बनाए। शोएब मलिक ने केवल 16 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 और उमर अकमल ने भी 16 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 22 रन बनाए, जबकि सलामी बल्लेबाज अहमद शहजाद ने 25 रनों का योगदान दिया। भारत के सुरेश रैना ने 4 रन देकर 1 और रविंद्र जडेजा तथा आशीष नेहरा ने 20-20 रन देकर 1-1 विकेट हासिल किया।
कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कल मौजूद थे बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव। अब नितिन ने विराट कोहली की धुआंधार बल्लेबाजी का लुत्फ उठाया ही। मैच के बाद उनकी मुलाकात हुई कुछ भारतीय प्रशंसकों से जो जीत की खुशी से बिल्कुल मस्त थे।
हम लोग इन गार्डन्स के बाहर हैं, हमारे साथ 4 लोग हैं, बहुत एक्साइटेड फैंस, इंडियन फैंस। इंडियन टी शर्ट आपने पहनी, क्या लगा मैच में?
बहुत ही अच्छा मैच था, थोड़ा और टाइट होना चाहिए था और बॉयज मेड इट लुक रियली इजी।
पिछली बार भी ऐसा हुआ था एडिलेड में, याद है आपको लास्ट ईयर?
यस, बट एज आई सेड लाइक काफी अच्छा मैच था।
ऐसा क्यों होता है कि इंडिया पाकिस्तान गेम वर्ल्ड कप इतनी हाइप होती है और हर बार एक सा रिजल्ट होता है कि आखिरी ओवर से पता लगता है कि कौन जीत रहा है कौन?
सब साइकोलॉजिकल होता है, इंडिया एकदम मेंटली स्ट्रॉन्गर है तो वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं इतने सालों से, अभी तो मतलब 10 विक्ट्रीज इन अ रो हो गए, तो इंडिया इज क्लियरली हैविंग फन एंड जीत तो रहे, मजा है।
अभी नागपुर में हार गए थे, आप बताइए आप आगे के दो मैचेस के बारे में तो बताइए।
मुझे पता ही नहीं कौन से दो मैचेस हैं। इंडिया पाकिस्तान के लिए आई थी और इंडिया पाकिस्तान इंडिया जीत गया, दैट्स इट।
ये यही जो है लोग कह रहे हैं कि अल्टीमेट मैच है सबके लिए,
नहीं
बट इवेंचुअली तो बांग्लादेश है, अभी ऑस्ट्रेलिया है, इतना आसान भी नहीं है।
हाँ, इंडिया को मोमेंटम बनाए रखना है, जैसे आज आपने देखा वुमेन्स वर्ल्ड कप में द इंडियन टीम एक्चुअली लॉस्ट टू द पाकिस्तानी टीम, सो देयर इज लाइक अ पैरेलल देयर। सो आगे जाके मोमेंटम बनाए रखना है, मोहाली में मैच है और बैंगलोर में मैच है, उन दोनों मैचेस को भी जीतना जरूरी है एंड वी होप दैट द गाइस ब्रिंग द कप बैक होम एंड दैट्स गोना हैपन व्हेन दे विन।
जो एक्साइटमेंट है और जो हाइप है होम ग्राउंड्स में खेलने की और इंडियन टीम से जो एक्सपेक्टेशंस है, क्या आपको लगता है कि हमारी बैटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है लोग कहते हैं, बट बॉलिंग को लेकर आपका क्या असेसमेंट है?
नहीं, आज भी बॉलर्स ने काफ़ी अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया पाकिस्तान को अंडर 120 एंड देन इट बिकेम ईजी फॉर द बैट्समैन टू do well.
और ये देखिए मतलब अब 10-11 और पिछले 11 जो विन्स भी हुए हैं इंडिया के पिछले 2 महीनों में, उसमें भी तो सारा बॉलिंग अटैक ने ही एक्चुअली सेटअप किया है बैटिंग के लिए, और बैटिंग तो हमेशा स्ट्रॉन्ग सूट रहा है इंडिया का, लेकिन बॉलिंग एकदम काम करने से इट्स बिकम मच मच बेटर, गिवन मोर कॉन्फिडेंस टू द टीम।
ये थे नितिन श्रीवास्तव, बात कर रहे थे कोलकाता के ईडन गार्डन्स के बाहर कुछ प्रशंसकों से। और हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने बात की खेल के जानकार और हमारे साथी रह चुके मलय नीरव से और इस बारे में और जानकारी ली।
ये जीत बहुत जरूरी थी क्योंकि ये करो या मरो वाली स्थिति थी, जिस प्रकार से न्यूजीलैंड के हाथों भारत की हार हुई थी और भारत के बल्लेबाज स्पिन गेंदबाजी को खेलने में विफल हुए थे, उसके बाद भारत के हौसले पहली बार पस्त थे और निश्चित रूप से एक हाई प्रेशर गेम होता है जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिस प्रकार से विराट कोहली ने और उनके साथ युवराज सिंह ने, जिसको कहते हैं कि एक साझेदारी तो तबीयत से निभाओ यारों, उस साझेदारी को निभाया और जिस प्रकार से एक सीट एंकर के रूप में विराट कोहली ने एक छोर को थामे रखा, तो ये भारत की जीत का सबब बना। और मुझे लगता है कि जीत से न सिर्फ भारत के हौसले बुलंद होंगे बल्कि भारत को कई नई सीखें भी मिलेंगी। भारत के लिए सीख ये है कि अभी विश्व कप में मैच खेलने बाकी हैं और भारत का जो ग्रुप है वो बहुत आसान ग्रुप नहीं है, लेकिन अपनी कमियों का अगर हमें सही अंदाजा हो जाए और अपनी मजबूतियों को हम सही ढंग से परख पाए तो मेरे ख्याल से भारत के लिए बेहतर होगा। मैं ये कहूंगा कि जीत बहुत अच्छी हुई है, बड़ी नपी तुली जीत है, संतुलित टीम की एक अच्छी जीत है, मगर अब भी सुधार का बहुत स्कोप है, बड़ी गुंजाइश है।
और मलिक जी, आपको लगता है कि भारतीय गेंदबाजों ने ठीक ठाक काम किया? जिस तरह से 18 ओवर में उन्होंने पाकिस्तान को 5 विकेट पर 118 रनों के स्कोर पर रोका।
बिल्कुल, बहुत अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन भारत की ओर से रहा, मगर साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ईडन गार्डन की ये पिच 2020 की पिच नहीं थी, माफ कीजिएगा 2020 की जो विधा है, जो ये शॉर्टर फॉर्मेट है, उसमें अगर आप ऐसी पिच बनाए जिस पर रन न बन पाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत दुनिया भर में इसकी बहुत शिकायत होगी इस बात की। हाँ, ये जरूर है कि हमारे गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से अश्विन ने और उनके साथ साथ भारत के स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, मेरे ख्याल से काबिले तारीफ। और एक बार फिर ये तय हो गया कि गेंदबाज आसानी से मैच जिता सकते हैं, बल्लेबाज तो अपनी भूमिका निभाते ही हैं। अगर स्कोर बड़ा होता तो डिफेंड करना भारत के लिए शायद उतना आसान नहीं होता।
ये थे मलय नीरव, उनसे बात कर रहे थे आदेश कुमार गुप्ता। और अब देखते हैं कि भारत के अखबारों में क्या क्रिकेट ही छाया हुआ है या कुछ दूसरी खबर भी है। हरिता
जी, फैसल जी, आज खबरों में सबसे प्रमुख पाकिस्तान पर भारत की विजय, सभी अखबारों में प्रमुख खबर है ये। संडे न भारत टाइम्स जी, बड़ी फतह, महामुकाबले में कोहली का कमाल, संडे न भारत, महामुकाबला, न भारत टाइम्स ने यह हेडलाइन दी है। जनसत्ता ने लिखा है कि कोलकाता में विराट जीत, भारत पाक क्रिकेट मैच,
मतलब विराट कोहली ने जो कल अपना बल्ला चलाया उसकी।
रविवार यह हिंदुस्तान में कोहली का होली धमाल, विराट जीत, विश्व कप T20 में पाकिस्तान को 6 विकेट से मात और भारत का अपराजय रिकॉर्ड कायम।
अपराजय रिकॉर्ड मतलब अखबार भी जो है बिल्कुल उत्प्रोत है।
37 गेंदों में विराट कोहली ने 55 रन बनाए, 1 छक्का और 7 चौके की मदद से। अमर उजाला ने लिखा है पाकिस्तान फिर पस्त, भारत की विराट जीत, तो यही खबरें छाई हुई हैं। इसके अलावा एक खबर जिसका जिक्र मैं अभी करना चाहती हूँ, द हिंदू अंग्रेजी अखबार में PDP accuses BJP of betrayal as Mift महबूबा मुफ्ती returns। PDP की महबूबा मुफ्ती ने जी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया भाजपा पर कि धोखा दिया गया है और अब सरकार बनने की उम्मीद जम्मू कश्मीर में लगभग
भारतीय प्रशासित जम्मू कश्मीर में दोनों के बीच सरकार बनने की कोशिश
बिल्कुल खत्म हो गई है ये उम्मीद। इसके अलावा एक और खबर जिसका मैं यहाँ जिक्र कर रही हूँ, हिंदुस्तान ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है, कारगिल में हिमस्खलन के बाद एक जवान लापता है। और एक और खबर हिंदुस्तान ने छापी है, प्रधानमंत्री मोदी को ट्विटर ने बनाया दुनिया का नेता, भारतीय मूल के एक प्रोफेसर ने अध्ययन किया, परंपरागत मीडिया को छोड़ सोशल मीडिया में सक्रियता मददगार बनी मोदी के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया अखबारों की समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 19, 25, 41 और 49 मीटर बैंड, यानी 5980, 7395, 11995, 15510 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब भारत से सीधे रुख बेल्जियम का, जहां पुलिस का कहना है कि साल अब्दुल सलाम ने पुलिस के सामने कबूल किया है कि वो पेरिस हमला करने के बाद खुद को उड़ाना चाहता था, लेकिन बाद में उसका इरादा बदल गया। पिछले साल नवंबर के पेरिस हमले में 130 लोगों की मौत हो गई थी। BBC संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुने हरिता कांडपाल से।
फ्रांस के वकीलों ने कहा है कि ब्रसल्स से पकड़े गए सलाह अब्दुल सलेम ने पिछले साल हुए पेरिस हमलों में अहम रोल निभाया था। पेरिस में सरकारी अभियोजनकर्ता ने कहा कि अब्दुल सलाम ने यह माना है कि उसे भी पेरिस हमलों में आत्मघाती हमला करना था, लेकिन आखिरी वक्त में उसने अपना इरादा बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब्दुल सलाम ने असलाह जुटाने से लेकर आत्मघाती हमलावरों की टीम का गठन करने में अहम भूमिका निभाई थी। सरकारी वकील फ्रांसवा मोलिंस ने बताया, सलाह अब्दुल सलेम ने पेरिस हमलों और सैंट डुई में हमले में अहम भूमिका निभाई थी। 13 नवंबर के हमलों के लिए कमांडो हमलावरों को तैयार करने और उन्हें हथियार दिलाने में भी उसने प्रभावी भूमिका निभाई थी। उसे 13 नवंबर को खुद को उड़ा देना था। सलाह अब्दुल सलेम को शुक्रवार को बेल्जियम में ब्रसल्स के पास एक घर पर छापे के दौरान गिरफ्तार किया गया था। उस दौरान उसके पैर में गोली लग गई थी। उस पर चरमपंथी गतिविधियों में शामिल होने और चरमपंथियों द्वारा हत्या के मामले में आरोप लगाए गए हैं। सरकारी वकील फ्रांसवा मोलिंस ने बताया,
सलाह अब्दुल सलेम a aujourd'hui au cours de ses auditions devant les enquêteurs belges
बेल्जियम के जांचकर्ताओं ने इसकी पुष्टि की है और मैं भी कह रहा हूं कि उसे स्टाद दे फ्रांस में पिछले साल खुद को उड़ाना था, लेकिन फिर वो इससे पीछे हट गया। फ्रांसवा मोलिंस के शब्द। फ्रांस ने अब्देसलाम को बेल्जियम से प्रत्यर्पित कर फ्रांस लाने की इच्छा जाहिर की है। पिछले साल नवंबर में पेरिस हमलों में 130 लोगों की मौत हो गई थी। चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली थी। अब्देसलाम के वकील स्वेन मैरी ने फ्रांस को प्रत्यर्पण किए जाने का विरोध करने की बात कही है। स्वेन मैरी ने कहा, वो बेल्जियम पुलिस के साथ सहयोग कर रहा है और फ्रांस में प्रत्यर्पण किए जाने से इनकार कर रहा है। जांचकर्ताओं को उम्मीद है कि अब्देसलाम वो कड़ी है जिससे पेरिस हमलों की साजिश के बारे में अहम जानकारियां मिल सकती हैं। जांचकर्ताओं को इस्लामिक स्टेट पर भी नई जानकारी मिलने की उम्मीद है।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
और अब रुख दोबारा भारत की तरफ। भारत के झारखंड के लातेहार जिले में दो पशु व्यापारियों की हत्या के बाद उनके शव पेड़ से लटके पाए गए हैं। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने इनमें से एक मृतक मजलूम अंसारी के भाई अफजल अंसारी से बात की तो उन्होंने कहा,
ये लातेहार मेरा साइड में गांव है, जगह पर मेला लगा हुआ था जानवर के, वहां से मेला से जानवर खरीद के, मतलब बैल, किसानों बैल होता है जोतने वाला, तो वही मेला में खरीदा और वही जानवर लेके अभी जा रहा था। टूटी लावा अभी मेला लग रहा है, हजारीबाग तरफ पड़ता है, तो उसी में 5 बजे भोर में झाबर गांव में उस मेरा मजलूम जो था और एक वो 12 साल के लड़का था, वो भी अपना लेके जा रहा था, जो कि उसको भी लोग टांग दिया मार। वो लोग मतलब गौ अच्छा अभी काग बोलते हैं वो सब नहीं है, तो वही सब को कहना था कि गौ लोग ये सब ले जाता है जानवर काटने वाले, गौ रक्षा समिति वाले वो लोग हैं, गौ रक्षा समिति मतलब वो लोग खरीद बिक्री बंद कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं कि खरीद बिक्री कुछ नहीं करना, तो इसी चलते वो लोग मारे। मेरा मजलूम जो था वो 32-33 साल के था, उसके 4 बच्चे हैं, वो भी अपना लेके जा रहा था, जो कि उसको भी लोग टांग दिया मार। तो ये लोग दो हत्या वाला जानवर नहीं था, आज सारे लोग साहब लोग पहुंचे, सारे लोग के हम दिखा दिए, देखिए जानवर मतलब किस तरीके से जानवर है, ये सब दो हत्या वाला जानवर है कि जोतने वाला जानवर है, किसान लोग इसको हल चलाता है, खेती करता है, वो सब जानवर।
आपने पुलिस में इसकी शिकायत की है, पुलिस का क्या कहना है इस बारे में?
इसमें SP DSP मतलब सारे लोग आए थे, हम लोग तो बहुत बुद्धि नर्वस हो चुका है भैया, हम लोग तो दिमाग में आगे सूझ रहा है पीछे सूझ रहा है कि ये घटना ऐसा घटना हो गया है कि मतलब हम लोग तो दुनिया अंधार लग रहा है।
गो हत्या के नाम पर दो और हत्याएं, कह रहे थे मृतक मलजूम अंसारी के भाई अफजल अंसारी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इसे रंगदारी यानी कि पैसा वसूलने के लिए ये झगड़ा हुआ लोगों में और उसमें जो है मार दिया, और 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात भी पुलिस ने कही है। झारखंड की ही बात करते हैं कि झारखंड में स्थानीयता का मुद्दा आंदोलन का रूप ले रहा है। आदिवासी और मूलवासी संगठनों ने आज झारखंड बंद का आह्वान किया है। इन संगठनों का कहना है कि नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए और स्थानीय उन्हें मारा जाए जिनके पास अपने या पूर्वजों के नाम जमीन वगैरह का ब्यौरा है। क्या है पूरा मामला और आंदोलन का रुख किस तरफ ज्यादा दिख रहा है, इस पर रांची से नीरज सिन्हा की रिपोर्ट।
झारखंड की राजधानी रांची से लेकर कस्बाई इलाकों में ये नारे एक बार फिर गूंजने लगे हैं। शनिवार की शाम रांची में आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के बैनर तले बड़ी संख्या में युवाओं ने मशाल जुलूस निकाला। बंद को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी समेत कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने समर्थन दिया है। झारखंड कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष शीतल ओहदार कहते हैं,
ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। पूरे राज्य में आदिवासी मूलवासी नौजवान अपने अधिकार के लिए सजग हो चुके हैं, सरकार की मंशा साफ नहीं है, सरकार बार बार डेट देकर धोखा दे रही है।
कई महीनों से आंदोलन की कमान संभाल रहे आदिवासी मूलवासी जनाधिकार मंच के संयोजक राजू महतो का कहना है,
रघुवर दास जी को अल्टीमेटम दिए थे कि 26 जनवरी तक आप स्थानीय नीति घोषणा करें और झारखंड के जनभावना के अनुरूप आप स्थानीय नीति लागू करें, लेकिन हम लोग अल्टीमेटम को दरकिनार कर दिए।
झारखंड का मूल निवासी कौन, इस मुद्दे पर इन दिनों राज्य की सियासत भी गरमाई हुई है। हाल ही में झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में प्रमुख विपक्षी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों ने इस मुद्दे पर काफी शोर शराबा किया था। 5 दिनों तक विधानसभा की कार्यवाही भी उन्होंने नहीं चलने दी थी।
जो विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष के दल हैं, उनकी राय इसके बारे में क्या है, वे स्थानीय नीति में क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए।
वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं,
ST SC को तो अपने रिजर्वेशन के आधार पर अपने कोटे मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ के मूलवासी सबसे अधिक हताहत होंगे। यहाँ के जो मूलवासी हैं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, अलग अलग जाति धर्म के जो लोग हैं, उन सबको यहाँ पर सबसे अधिक नुकसान होने जा रहा है। इसलिए हमारी लड़ाई सिर्फ आदिवासियों के बीच में नहीं है, बल्कि पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य में है।
हालांकि विपक्ष के हंगामे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस साल यह नीति लागू की जाएगी, लेकिन आदिवासी संगठनों को इस पर यकीन नहीं। 15 सालों के दौरान सियासत के कई मोड़ से गुजरते इस मुद्दे को लेकर सर्वमान्य हल निकालना सरकार के लिए चुनौती भी है। लंबे समय से यह मांग भी उठती रही है कि जो झारखंड में रहता है उसे झारखंडी माना जाए।
ये थे नीरज सिन्हा रांची से, और अब देखते हैं कि किन किन खबरों पर रहेगी हमारी नजर।
भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कार्यकारिणी के समापन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। भाजपा कार्यकारिणी में पारित आर्थिक प्रस्ताव में संसद में पेश किए गए बजट में ग्रामीण इलाकों को दी गई प्रमुखता जैसे मुद्दों को जगह दी गई है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली आज चीन के दौरे पर जा रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, परिवहन और ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते होने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा आज क्यूबा की यात्रा पर हवाना पहुँच रहे हैं। 90 सालों में किसी अमरीकी राष्ट्रपति की ये पहली क्यूबा यात्रा है। कई दशकों तक दोनों देशों के ठंडे पड़े रिश्तों को सामान्य बनाने पर सहमति बनी थी, जिसके बाद क्यूबा और अमेरिका को करीब लाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ब्राजील के कई शहरों में राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आज हो सकते हैं। शुक्रवार को राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ के खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे, जिसमें लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लखनऊ में विश्व चिड़िया दिवस के मौके पर एक कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।
इन खबरों को सुनने के लिए और इन खबरों को देखने के लिए आइए bbchindi.com पर। और अब आज की खास रिपोर्ट। उत्तराखंड भले ही नवोदित राज्य कहा जाता हो, लेकिन उसके गठन के 1.5 दशक के दौरान प्रदेश की राजनीति में जिस तरह का सत्ता संघर्ष और सत्ता की संस्कृति ने जन्म लिया है, वो एक स्वस्थ संकेत तो नहीं देता। आप जैसा कि जानते हैं कि उत्तराखंड में राजनीतिक अस्थिरता आ गई है। वहां की कांग्रेस सरकार लगभग गिर चुकी है। 28 तारीख को बहुमत साबित करना है, जो मुख्यमंत्री हैं हरीश रावत को। तो सवाल उठता है कि क्या उत्तराखंड को राज्य बनाकर गलती की गई? क्या छोटा राज्य स्थानीय आकांक्षाओं और सपनों के नाम पर अस्तित्व में आ तो जाता है, लेकिन उसका हश्र अंततः सत्ता की खींचतान और नेताओं की आपसी रंजिशों की बदौलत दयनीय और हास्यास्पद हो जाती है? क्या उत्तराखंड के साथ यही हो रहा है? एक खास रिपोर्ट के साथ देहरादून से शिव जोशी।
खाम खां की न सुनाओ तो कोई बात करें, बात मुद्दों की उठाओ तो कोई बात करें।
करुणा और मर्म भरी ये पुकार उत्तराखंड के जनकवि गिरदा की है, जो पहाड़ की संघर्ष चेतना को अपने गीतों के जरिए जगाते रहे थे। ये उस आंदोलन की सच्ची आवाजें नहीं हैं जो इस छोटे से राज्य के निर्माण के लिए उठी थीं और अपने खून और संघर्ष की प्यास से सराबोर थीं। उत्तराखंड ने पिछले साल नवंबर में अपने गठन का 1.5 दशक पूरा किया। खूब जश्न जुलूस हुआ और चंद महीनों बाद आज हालत ये है कि एक बार फिर सत्ता को लेकर घमासान मचा हुआ है। राज्य निर्माण आंदोलनकारी और एक्टिविस्ट संजय कोठियाल,
तो अपने को ठगा सा महसूस कर रही है जनता का। अब जनता ने तो इतनी कुर्बानियों के साथ इस राज्य को हासिल किया था और ये वो तमाम लोग हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बैठे हैं, जो इस राज्य आंदोलन के, इस राज्य के विरोधी रहे। इन्होंने डंडे चलवाए हम हमारे ऊपर, जब हम लोग राज्य आंदोलन में शिरकत करते थे तो हमको देखकर हंसते थे, और आज वही लोग इस राज्य को लूट रहे हैं।
1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड कर्ज की कोख से निकला था। सत्ता राजनीति में पारदर्शिता और ईमानदारी रहती तो ये कर्ज चुक जाता, लेकिन आज इस राज्य की जनता एक नाटकीय राजनीतिक और एक भयावह सामाजिक यथार्थ से टकरा रही है। राज्य गठन के समय बीजेपी की अंतरिम सरकार, फिर उसे गिराने के लिए बीजेपी के ही नेता, फिर 3 महीने का मुख्यमंत्री, फिर पहला चुनाव 2002 में एनडी तिवारी की सत्ता और उठापटक, और इस तरह 2000 से लेकर 2014 तक 8 बार मुख्यमंत्री पद में बदलाव। जैसे यह राज्य ना हो, सत्ता के खेल का कोई सुहावना मैदान हो। सुनिए युवा राजनीतिक कार्यकर्ता और लेखक इंद्रेश मैखुरी को।
ये कोई सैद्धांतिक मतविरोध का मसला नहीं है कि कोई सैद्धांतिक रूप से कोई असहमति हो गई। इससे पहले भी जब खंडूड़ी की जगह निशंक और निशंक की जगह खंडूड़ी फिर मुख्यमंत्री बनाए गए भारतीय जनता पार्टी में, और जब कांग्रेस के राज में हरीश रावत विजय बहुगुणा की जगह मुख्यमंत्री बनाए गए, और यहां जो लड़ाई है आज की तारीख में वो ये लड़ाई है कि हरीश रावत ने खनन का, शराब का और तमाम तरह के ठेके जो दिए हैं, और उस लूट से जो पैसा हासिल हो रहा है, जमीनों की लूट से जो पैसा हासिल हो रहा है, वो हरीश रावत के लोगों के हाथों संकेंद्रित हो गया है। इसलिए हरक सिंह रावत की, विजय बहुगुणा की, उनके गुट की लड़ाई ये है कि इस लूट में उनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं है।
अलग राज्य से आम जन को क्या मिला, सुनिए क्या कहते हैं देहरादून में रिटायर्ड कर्मचारी कमला प्रसाद।
उत्तराखंड में जो लोगों ने जो शहीद हुए थे, आज वो सब जो है रो रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने और कांग्रेस दोनों ने जो है मतलब कोई अच्छा काम नहीं किया, और जो एक्चुअल जो यहाँ पर थे लोग उनका तो आया नामो निशान है नहीं।
गांवों में स्कूल है लेकिन अध्यापक नहीं, अस्पताल है मगर डॉक्टर नहीं, बिजली के खंबे हैं लेकिन बिजली नहीं, नदियां हैं लेकिन पानी का हाल सबको पता है, पहाड़ से पलायन बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है, जंगल कटते जा रहे हैं और पहाड़ की जमीन को हर साल और बंजर होते जाने से बचा नहीं पा रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत कैसे आ गई, बता रहे हैं प्रोफेसर लेखक और पत्रकार गोविंद सिंह।
इससे उत्तराखंड का नाम भी एक जमाने के हरियाणा या गुजरात जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर प्रदेशों की पंक्ति में आ गया है।
हैरान तो वामपंथी दलों का रवैया भी करता है। अलग राज्य और स्वायत्तता की सबसे पहले 1952 में मांग उठाने वाली सीपीआई भी अपनी जमीन तैयार नहीं कर पाई। उत्तराखंड में वैकल्पिक राजनीति का कोई स्वरूप बन ही नहीं पाया। सत्ता तंत्र और पूंजी के गठजोड़ ने तेजी से जगह बनाई। एक बहुत सघन धुंध उस प्रश्न के आसपास जमा हो गई जो उत्तराखंड के अस्तित्व को लेकर बना था कि आखिर राज्य का निर्माण किसके लिए और क्यों। इन हालात में गिरदा के बोल ही मानो उत्तराखंड की तकलीफ के साये बन गए हैं।
क्यों लड़ी थी वो लड़ाई बताओ हम सब ने, इन सवालों पे भी आओ तो कोई बात करें।
शिव जोशी, बीबीसी, देहरादून।
उत्तराखंड के जनकवि के रूप में जाने जाने वाले गिरधा ने उठाए कई सवाल। 8 बार शिव जोशी की रिपोर्ट में जैसा आपने सुना, 8 बार मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड में, और अभी भी वहाँ राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति। और अब सुनते हैं एक बार फिर से विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान पर भारत की जीत का सिलसिला जारी। कोलकाता में खेले गए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। पेरिस हमलों के मुख्य संदिग्ध ने कबूल किया कि उसे भी करना था आत्मघाती हमला, लेकिन आखिर में उसने अपना इरादा बदल दिया। पेरिस हमलों के प्रमुख संदिग्ध सलाह अब्देसलाम पर आरोप तय कर दिए गए हैं। उसे शुक्रवार को ब्रसल्स में गिरफ्तार किया गया था। ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ ने कहा है कि वो उस सेनेटर के खिलाफ मानहानि का आपराधिक मुकदमा दर्ज करवाएंगी जिन्होंने दावा किया था कि डिल्मा रूसेफ तेल कंपनी पेट्रोब्रास के घोटाले में शामिल है। ट्यूनिशिया में अधिकारियों ने कहा है कि लीबिया की सीमा के पास बेन गुआरदान शहर में हिंसक संघर्ष में 2 चरमपंथियों की मौत हो गई है। प्रवासी संकट से निपटने के लिए यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच हुआ समझौता आज से लागू हो जाएगा। मिस्र के आंतरिक मंत्री ने कहा है कि सिनाई प्रायद्वीप में एक नाके पर मोर्टार हमले में 13 सुरक्षाकर्मियों की मौत हो गई है। और अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप की एरिजोना में रैली का जबरदस्त विरोध। बीबीसी समाचार।
تکنیکی پکش سنبھالا تھا شاکر عالم نے. ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی اگر آپ چاہیں تو فالو کر سکتے ہیں. نمسکار.